کنم شد. वित्त विभाग में काम करने वाले एक अधिकारी की यह आदत थी, जब भी अन्य विभागों से पैसों की मांग आती थी तो वो कहता था, कृपया ये बताने का कष्ट करें कि इसके पहले आपका काम कैसे चलता था। वो अविवाहित था, दूसरों के कामों में, फाइलों में हमेशा अड़ंगा डालता था और यही वाक्य लिखकर भेजता था, जब भी पैसों की मांग आती थी कि कृपया ये बताने का कष्ट करें कि इसके पहले आपका काम कैसे चलता था। उसका विवाह निश्चित हुआ, वेडिंग कार्ड्स उसने सब तरफ भेजे, पर वो सारे कार्ड अगले दिन वापस आए और हर एक कार्ड में एक लाइन लिखी थी, कृपया ये बताने का कष्ट करें कि आपका काम इससे पहले कैसे चलता था। उलझनों में और रिश्तों में और अननेसेसरी अफेयर्स में व्यक्ति स्वयं को बांध देता है। और वो एक प्रिजन बन जाता है। लाइफ पार्टनर्स नहीं, लाइफ प्रिजनर्स। सारा खेल स्मृति और विस्मृति का है। जहां विस्मृति है वहां बंधन है, उलझन है, विस्तार है। जहां स्मृति है वहां जागृति है, होश ही जागरण है। और सबसे बड़ा जागरण है समान, और सबसे बड़ी सीट और सबसे बड़ी गद्दी है समान। समान सिंहासन है, समय परीक्षा है, प्रेम प्रमाण है। सुबह की अव्यक्त वाणी। जो व्यक्ति विस्मृति में होता है तो भटकता है, एक वस्तु से दूसरी वस्तु की ओर, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की ओर, एक साधन से दूसरे साधन की ओर, एक वैभव से दूसरे वैभव की ओर, पर अंदर से दुखी, उदास और प्यासा ही रहता है। क्योंकि जिसे वो सुख समझ रहा है वो सुख का भ्रम मात्र है। चाहे वो सुख वो काम में ढूंढे, वासना में ढूंढे, संगीत में, भक्ति में, रिश्तों में, सेवाओं में, वो सब कुछ केवल उसे अल्पकाल का सुख ही दे सकते हैं, क्योंकि सुख की खोज बाहर हो रही है, परों में हो रही है। एक व्यक्ति बहुत दुखी है और बहुत परेशान है और बैठा हुआ है। उसका मित्र उसके पास बैठा हुआ है और उससे पूछता है, इतने दुखी और इतने परेशान क्यों हो, क्या है तुम्हें, कौन सा दर्द है, सिर दर्द है, पेट दर्द है, क्या है? वो कहता है, ना सिर दर्द है ना पेट दर्द है, फिर क्यों इतने दुखी हो? वो कहता है, मेरा जूता मुझे काटते रहता है इसलिए मैं दुखी हूं। वो मित्र हैरान होकर पूछता है, तो बदल क्यों नहीं देते या उसे ठीक क्यों नहीं कर देते? व्यक्ति कहता है, नहीं कर सकता, क्योंकि वही तो मेरे सुख का एकमात्र कारण भी है। मित्र और अधिक आश्चर्यचकित होता है, पूछता है, कैसे? वो व्यक्ति कहता है, पहले ही मैं इतनी मुसीबतों में हूं, पत्नी बीमार है, जॉब नहीं है, लड़का बुरी संगत में है, मैं बहुत दुखी हूं। वो मित्र कहता है, इसलिए तो कह रहा हूं, जूता बदल दो या उसको ठीक कर दो। वो व्यक्ति कहता है, कैसे बदलू, सारे दिन भर चुपता रहता है और जब रात में निकालता हूं, वो एक ही तो क्षण है जीवन का जब सुख मिलता है, दैट इज द ओनली टाइम जहां पर रिलीफ की अनुभूति होती है। चुभने वाले जूते, हमारे सारे सुख भी ऐसे ही है, जो सुख व्यक्ति काम विकार में ढूंढ रहा है या फिर किसी संसार के साधन में या किसी व्यक्ति में, किसी स्पर्श में, किसी शरीर में, किसी दृश्य में, किसी गीत में, किसी संगीत में, किसी सुगंध में, वो सारे सुख झूठे हैं, वो सारे सुख सुख है ही नहीं, भ्रम मात्र है, चुभने वाले उस जूते की तरह है जो क्षणिक सुख देता है और भ्रम उत्पन्न करता है सुख का। सुख विधायक है, पॉजिटिव, एब्सेंस ऑफ नेगेटिव सुख नहीं है, एब्सेंस ऑफ सॉरो सुख नहीं है, और वो बाहर नहीं है, वो भीतर है, और यही भीतर की यात्रा समान की यात्रा है। सुबह की अव्यक्त वाणी, समान की पहचान अर्थात सबने मुरली पढ़ी है, सबने मुरली सुनी भी है, सुनी है, केवल पढ़ने को टाइम ही नहीं था, सुबह से भटक रहे हैं। स्वयं की पहचान, समान की पहचान अर्थात स्वयं की पहचान, और यही एकमात्र प्रश्न है, और यही एकमात्र प्रश्न है जिसका उत्तर हमें ढूंढना है, और इतना सहजता से और इतना जल्दी से इस उत्तर की तरफ नहीं पहुंचना है। मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं कहां हूं, मैं किस लिए हूं, और मैं क्या कर रहा हूं, मुझे क्या करना है और मैंने क्या किया, कहां जा रहा हूं, किस ओर, यही प्रश्न है। तो सुबह की अव्यक्त वाणी समान से संबंधित है, समय से संबंधित है, अटेंशन एक रस, एकाग्र, खबरदार, होशियार, अलर्ट, सेल्फ रियलाइजेशन, कितने सारे शब्द बिखरे पड़े हैं। कौन किससे मिलने आया है, कौन किससे मिलने आया है, कौन? जो परमात्मा प्यार के पात्र हैं, जो ईश्वरीय संतान है, पहली संतान, सृष्टिकर्ता की पहली रचना है, जो सृष्टि के आधार मूर्त और उद्धार मूर्त है, जो जो पूर्वज है, जो पूज्य है, जो ताज तख्त और तिलकधारी है, जो बालक सो मालिक है, जो फरिश्ता सो देवता बनने वाली आत्मा है, जो आधार मूर्त और उद्धार मूर्त है, जिनके पास बेहद के खजाने हैं, भगवान उनसे मिलने आया है और पूछा है, क्या ये सब चीजें याद रहती है? अगर ये सब याद है तो सब ठीक, अगर ये विस्मृत होता है और अटेंशन की कमी है तो जहां स्वमान की विस्मृति होगी वहां पर परेशान होंगे, जहां स्वमान की विस्मृति होगी वहां पर थकेंगे, जहां स्वमान की विस्मृति होगी वहां देहभान आएगा। इसलिए साधना स्वमान की है, स्वमान ही सिंहासन है, स्वमान ही ताज है, स्वयं को निरंतर याद कराते रहना, मैं कौन हूं, मैं किस लिए हूं, मुझे क्या करना है। जब जब समान से हम नीचे उतरते हैं तब तब गलतियां होती है, भटकते हैं, किसी देहधारी के प्रति आकर्षण होता है, किसी के गुणों के प्रति तो किसी के देह के प्रति, किसी के विशेषताओं के प्रति, किसी के रूप के प्रति, किसी के नाम के प्रति, आकर्षण पतन है। इट करप्ट्स, एकाग्र, एकरस, एकाग्रता की स्थिति, दृढ़ता की स्थिति, मुरली के एंड में कहा है, समान अर्थात मैं कौन हूं की खोज, समान अर्थात स्वयं स्वयं को मान देना, समान अर्थात हायर कॉन्शियसनेस, समान अर्थात रियल कॉन्शियसनेस, जहां समान है वहां देहभान नहीं हो सकता। देहभान का एंटीडोट है, काट है समान, क्योंकि जहां शरीर भान आ गया वहां पर भटकाव है, आकर्षण है, लगाव है, मोह है, चित्त विचलित होता है, चंचल होता है, भटकता है, बेचैनी होती है, समान अर्थात विकारों की तरंगों को शांत कर देना और ऊपर उठ जाना, अनडिस्टर्ब्ड, अनटच्ड, इंटैक्ट। तो मुरली की शुरुआत ढेर सारे समानों से है। तुम कौन हो? परमात्मा प्रेम के पात्र आत्मा हो। तुम कौन हो? पहली रचना हो। तुम कौन हो? पहली संतान हो। तुम कौन हो? आधार मूर्त हो, उद्धार मूर्त हो। तुम रिस्पॉन्सिबल हो, ये कोई नहीं कह सकता। ये नहीं कह सकता है कि मैं अभी अभी आया हूं। जिसने भी भगवान को पहचाना, जिसने भी बाप को जाना, जिसने भी मेरा बाबा कहा और बाप ने मेरा बच्चा कहा, वो हर एक बच्चा क्या है? रिस्पॉन्सिबल। आधार हो विश्व का। यदि तुम गिरोगे तो संसार गिरेगा। यदि तुम में भोग विलास की तृष्णाएं हैं तो संसार में वही विप्रकंपन फैलेंगे। यदि तुम उपराम हो और वैराग्य में स्थिर हो तो वही वैराग्य की तरंगे चारों तरफ फैलेगी। हम ये नहीं कह सकते कि उसका मुझ में मोह है। उसका मुझ में मोह भी मेरी ही दमन की हुई वासनाओं का अवतार है। He is the manifestation of my suppressed desires. समान जहां है वहां परेशान नहीं होंगे। समान जहां है वहां थकेंगे नहीं। मैं सेवा में थक गया हूं। सेवा में थक जाना अर्थात विस्मृति है। छोटी सी शरीर की बीमारी आ जाए, मैं ये कार्य नहीं कर सकता। ये मुरली हम सुन चुके हैं आलस है, संस्कारों का टकराव है। जरा सी निंदा और जरा सी ग्लानी में अपसेट हो रहे हैं। मुरली में शब्द है सेट, सीट, अपसेट। सीट पर जो सेट है, अपसेट तो नहीं होते। अपसेट होना, दुखी होना, भोजन ठीक नहीं लगा तो गुस्सा, अपसेट। किसी ने कुछ कहा, अपसेट। दुखी हो जाना, उदास हो जाना, हताश हो जाना, बार बार असफलता हो रही है। भागना नहीं है, सामना करना है चुनौतियों का, हार का, असफलता का। 100 बार गिरे अब फिर से उठो। स्मृति ही जागरण है, जागरण ही होश है, होश ही समान है और समान ही मुक्ति है। चाहे कितनी बार भी गिरे हो, फिर उठो, फिर जागो। जागरण की वेला है। तो सबसे पहली बात मुरली की है, समान की, एकाग्रता की, एकर स्थिति की, अटेंशन की। मुरली में शब्द आया है होशियार, खबरदार, अलर्ट, अटेंशन। रियलाइज खुद को करना है, दूसरों को नहीं। दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरों के जीवन में क्या चालू है और दूसरों के विषय में तीसरा क्या कह रहा है। व्हाट इज दैट टू यू? माइंड योर ओन बिजनेस। ये इंटरफियरेंस ही पतन का कारण है। जहां अपने ही इतने सारे कार्य करने बाकी है और बुद्धि कहीं और लगी है, इसको क्या कहेंगे? मुरली में क्या आया है? सेल्फ रियलाइजेशन। स्वयं को रियलाइज करो, दूसरों को तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरों का कुछ करना ही नहीं है, ना किसी को कन्विंस करना है, ना किसी के लिए रुकना है, ना किसी को बुलाना है। हाँ, वो अगर फंस गए उसके बाद की स्टोरीज है वो सारी। विवाह ही एक ऐसी संस्था है जहां पर स्वतंत्रता अर्थात समझौता होता है। जो मुक्त है वो स्वतंत्र है और मन से स्वतंत्र हो जाना है। वो आए, वो चले, वो साथ दे, किसी के लिए नहीं रुकना है, ना किसी को कन्विंस करना है, ना किसी के उद्धार करने के पीछे पड़ना है. The other is trap, जाल है, जिसका उद्धार करने जाओगे उसी के साथ फंसोगे. तो समान आधार हो, उद्धार मूर्त हो, पूज्य हो, पूर्वज हो, तुम आत्मा के पीछे कौन बताएगा क्या है? तुम ब्राह्मण आत्माओं के पीछे क्या है? क्या है? सारी सृष्टि की आत्मा है. ना ना ना, मुरली का बताओ. तुम एक एक के पीछे क्या है? पीछे मुड़कर देखो कौन है. तुम एक एक के पीछे कौन है और क्या है? प्यासी आत्मा है, दुखी आत्मा है, मुरली में क्या है? निश्चय बुद्धि आत्मा है, विश्व की आत्मा है. अच्छे से याद करो क्या है. आधार मूर्त, उद्धार मूर्त हमारे पीछे. हम ही तो आधार मूर्त, उद्धार मूर्त है. पूर्वज हमारे पीछे है. अरे हमारे पीछे क्या है वो पूछ रहे हैं क्या? भक्त आत्मा है. भक्त शब्द मुरली में आया है क्या? हफ्ते भर का नहीं सुनाना है, आज का सुनाओ. विश्व की आत्माओं का आधार तुम एक एक आत्मा के पीछे. विश्व की आत्माओं का आधार है. यू आर रिस्पॉन्सिबल. समान अर्थात पावर, एंड विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी. जितनी ज्यादा पावर, जितना ज्यादा अथॉरिटी और जितना ज्यादा अधिकार जिसके पास है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ जाती है. जिसके पास अधिकार कम होते हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी कम है. तो समान अर्थात हमारे लिए वरदान भी है तो हमारे लिए जिम्मेदारी भी है. तो मुरली की शुरुआत समान से, आगे आगे आगे, अटेंशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी और दूसरी पॉइंट है समय. समय के बारे में क्या कहा? समय का महत्व और एवर रेडी और समय का भरोसा नहीं है, शरीर का भरोसा नहीं है. और समय के विषय में क्या कहा? बीज बोने का समय है, प्राप्तियों का युग है, छोटा सा युग है, पर जो करना है अभी कर सकते हो. बीज व्यर्थ बातों में समय गवाते हुए लेट सोना, अर्थात अमृत वेले की नींव पर ही कुठाराघात करना है. अपसेट होना टाइम वेस्ट है, पश्चाताप ही करते रहना टाइम वेस्ट है, प्रसिद्धि के लिए दौड़ना टाइम वेस्ट है. यहां तो हमें अपना कार्य करना है जो इतना सारा पेंडिंग है. अपने जीवन के टाइम वेस्टर्स और एनर्जी ड्रेनर्स की लिस्ट निकालनी है. कौन सी लिस्ट निकालेंगे? एक कॉलम टाइम वेस्टर्स, दूसरा कॉलम एनर्जी ड्रेनर्स. कौन सी चीजें हैं जो मेरी ऊर्जा को खींच लेती है। हो सकता है कोई संगति, कोई सोहबत, कोई ऐसी आत्माओं के संग रहते हैं कि जिन्हें पुरुषार्थ में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है और उन्हीं के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं और वो ऊर्जा को, एनर्जी को और एनर्जी को सक कर लेते हैं। छोड़ दो उनको। इस तपस्वी जीवन में संग केवल उनका ही करना है जो पर से मुक्त है और जो स्व में स्थित है और जो होश में है और जो जागरण में है, जो अटेंशन में है। होशियार, खबरदार, अटेंशन, अलर्ट, जिनका अपना पुरुषार्थ चल रहा है और जिनको दूसरों में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है, केवल ऐसी आत्माओं का संग करना है जिनकी आंखों में परमात्मा प्रतिबिंब दिखता है। बाकी सारी कंपनी भटकाने वाली है। स्टॉप इट। कुसंग ही भटकाता है और यहां पता ही नहीं चलता है कि कौन सा कुसंग है, क्योंकि सभी व्हाइट पहने हुए हैं और बैच लगाए हुए हैं और मस्तक पर किसी के भी लिखा हुआ नहीं है कि मैं माया हूं। समय बर्बाद कहां हो रहा है? इंटरनेट, गूगल, सोशल मीडिया कहां? रिलेशनशिप निभाने में लगे हुए हैं जबकि वो रिलेशनशिप सड़ चुका है। निष्प्राण है, उसको क्यों पकड़े हुए हो? कट ऑफ। टाइम वेस्ट, एनर्जी वेस्ट, मनी वेस्ट, संकल्प वेस्ट, एनर्जी ड्रेनर्स और टाइम वेस्टर्स। यहां से घर जाने से पहले जब तक मधुबन में है, आज रात और कल सुबह अमृतवेला, वहां पहुंचने से पहले ही वहां क्या करना है उसका प्रोग्राम बना के जाना है। प्लानिंग, और प्लानिंग के साथ में वरदान। तो ये कार्य होगा, नहीं तो यहां आना, यहां भट्टी करना केवल और केवल एंटरटेन मात्र है, जिसमें कुछ क्लासेस सुनी, नोट्स निकाले और बाकी समय इधर उधर घूमने फिरने में चला गया, इससे उससे बातें करने में चला गया। जिस कार्य के लिए आए थे वो अधूरा ही रह गया। रिलेशनशिप फ्रैक्चर्स, इमोशनल फ्रैक्चर्स का रिपेयर तो हुआ ही नहीं। समय के महत्व को जानना है, समय परीक्षा है। और मुरली में और एक चीज कहिए, अब समय अवसर है। कब अर्थात आलस, और अब अर्थात डैश। कौन बताएगा? तुरंदान महापुण्य। अब और कब, जो करना है अब करो, अवसर अब है। द टाइम इज नाउ, द मोमेंट इज हियर, द प्लेस इज दिस। यहां अब, इस समय अभी डिसाइड करो। नो सेकेंड चांस, नो रिटेक। बार बार ये अवसर आएगा ही नहीं। हो सकता है सारी भट्टियां ही बंद हो जाए। हो सकता है या नहीं हो सकता, कुछ भी हो सकता है। भरोसा ही नहीं है, मुरली में ही आया है आज, किसी भी चीज का भरोसा नहीं है। संसार कोई एक नया ही मोड़ ले ले अचानक। द लास्ट चांस, द फाइनल चांस। इस भाव दशा में रहना है और अपने आप को जगाना है। उठ हे तपस्वी, इधर एक सोया हुआ तपस्वी बैठा है। आलस अर्थात नींद, नींद का ही दूसरा नाम क्या है? आलस, अलबेलापन, रॉयल आलस। मुझसे नहीं होगा, थोड़ी सी बीमारी आ गई तो मुझसे नहीं होगा, सब तो कर रहे हैं, देखेंगे, सोचेंगे, करेंगे, मैंने कभी किया नहीं है, किया नहीं है तो करो, ये मुझे आता नहीं है, आता नहीं है तो सीखो, मेरी उम्र हो गई है, शरीर साथ नहीं देता, घुटने में दर्द है, थकान सी रहती है, उठते ही थकान लगती है, पता नहीं क्यों, रिपोर्ट में कुछ नहीं आता, बस ये पता नहीं कैसी बीमारी है हमारी, हमारी बीमारियों का इलाज डॉक्टरों के पास ही नहीं है, सारी जांचें कराते और जैसे ही डॉक्टर कहता है सब नॉर्मल है, जो पीड़ा इधर होती है, दर्द, उसका क्या वर्णन करें, हम इतने बीमार और रिपोर्ट में कुछ नहीं है, जवान है पर भाग नहीं सकते, दौड़ नहीं सकते, थकान होती है, जरूर कहीं ना कहीं एनर्जी ड्रेन हो रही है, शरीर के चक्र मेरिडियंस ब्लॉक्ड है। बहुत बहुत वर्षों पहले, हजारों वर्षों पहले, एक सैनिक था चीन में, उसके पैर में गोली लगी और गोली ऐसी लगी कि गोली लगी और निकल गई, और ये जो सैनिक था उसको 30 वर्ष से सिर में दर्द था, सारे इलाज करा लिए ठीक नहीं हुआ था, और जैसे ही गोली लगी और गोली निकल गई उसका सिर दर्द ठीक हो गया, आश्चर्यचकित हुआ, खोजबीन हुई और फिर पता चला शरीर में भी ऐसे कुछ बिंदु है, एक बिंदु को चोट करो तो दूसरे बिंदु पर असर होता है, इस तरह से अकुपंक्चर का इन्वेंशन हुआ, फिर इसमें और खोजे हुई, बहुत सारे बिंदु, हर बार गोली मारने की जरूरत नहीं, फिर एक बिंदु को चोट करने पर एक बिंदु दूसरे बिंदु से जुड़ा हुआ है, और केवल दर्द ही नहीं, हजारों लाखों बीमारियां ठीक करने लगे लोग। मेडिकल साइंस तो इसको आज रिजेक्ट करता है, क्वैकरी कहता है, वॉट एवर इन्फेक्शन होगा, परंतु साइंस तो वो भी है ही, चाइनीज ट्रेडिशन मेडिसिन में आता है, और इतने हजारों वर्ष से हजारों लोगों की हजारों बीमारियां उससे भी ठीक हुई है, ऐसा कोई पैथी नहीं है कि जिससे बीमारियां ठीक नहीं हुई है, भले दिखने वो इलॉजिकल अनसाइंटिफिक भी लगे, फिर भी उससे भी लोग ठीक हुए हैं, क्योंकि वास्तविक बीमारी तो मन में है, और इलाज जितना विलक्षण होगा, बहुत दूर कोई है जंगल में और वो झाड़ फूक करने वाला है और रास्ता भी इतना कठिन है और उसको मिलने के लिए 2 दिन वेट करना पड़ता है और इलाज की प्रक्रिया भी इतनी अजीबोगरीब है, उससे तो आदमी ठीक होता ही होता है, ये सबसे ही ठीक हो जाता है, इलाज से क्या हो रहा है पता नहीं, क्योंकि बीमारी तो इधर है, वास्तविक बीमारी। तो जब इस शरीर की इतनी बातें हैं जो हम नहीं जानते, यहां बातें चल रही है आत्मा की, समान की, मैं कौन हूं की, जब हमने शरीर को ही पूरी तरह से नहीं जाना तो आत्मा को कितना जाना है, शरीर में ही कैसे कैसे चक्र है और बिंदु है, मेरिडियंस है, नाड़ियां है, अद्भुत से शक्ति, ऐसे ऐसे पॉइंट है जिनका हमारे पास कितना कम ज्ञान है, शरीर जो दिख रहा है उसके विषय में ही हम इतना नहीं जानते, आत्मा जो अदृश्य है उसको जानने की कैसी गहरी साधना होनी चाहिए, कितनी डीप साधना होनी चाहिए। शरीर से परे निकल जाने की साधना, शरीर की पृथकता को जानने की साधना, शरीर की दिव्यता अलौकिकता को, आत्मा की दिव्यता और अलौकिकता को जानने की साधना, समय देना पड़ेगा, दिनचर्या सेट करनी पड़ेगी, अगर 4 घंटा ट्रैवलिंग में जा रहे हैं और 8 घंटा ड्यूटी कर रहे हैं तो कहां से अमृत वेला होगा, कहां से नुमाशाम का योग होगा, और 2 चार्जिंग पॉइंट ही अगर मिस हो रहे हैं तो सारा दिन केवल ड्रेनेज मात्र है, और जब ड्रेनेज हो जाता है तो आत्मा सुख की खोज करती है, फिर वही चुभने वाला जूता, कोई साथी चाहिए, कोई पार्टनर चाहिए, कोई हाथ रखने वाला चाहिए, कोई हाथ पकड़ने वाला चाहिए, हर अप्रूवल के लिए दूसरे की हस्ताक्षर की आवश्यकता है। विवाह ऐसा एक ऑफिस है। कुमार बैठे हुए इशारों को समझते जाओ। तो समय, समय का महत्व, छोटा सा समय बीज है ये सर्व प्राप्तियों का, बेहद के खजानों का। मुरली में और एक शब्द आया है अनहद नाद, कौन सा है वो? पाना था सो पा लिया। ये शब्द नहीं जीवंत अनुभूति हो, शब्द नहीं जीवंत अनुभूति। अभी अभी अनुभव करो, आंखें बंद, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इस पर निबंध लिखो, इस पर 100 समान अफर्मेशंस बनाओ, नए शब्दों में इसे समझो। पाना था सो पा लिया। तो ये क्या है? बाबा ने कहा अनहद नाद है। ज्ञान को अलग अलग ढंग से समझना है। इस मुरली में और एक है प्रेम की निशानी, क्या है वो? प्यार की निशानी क्या है? साथ रहना, साथ चलना, साथ आना। हमारा जीवन क्या भगवान के साथ चल रहा है? अपने आप से पूछना है, किसके साथ चल रहे हैं? मनुष्यों के साथ या भगवान के साथ? जरूर भगवान से रिश्ता कमजोर है, इसलिए दूसरों से रिश्ता जोड़ने का प्रयत्न चल रहा है। दूसरों से दोस्ती क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? अंदर खालीपन है, एम्प्टीनेस, वैक्यूम है, इसलिए दूसरे चाहिए। जब अंदर भर जाए डिवाइन से, फिर किसी की आवश्यकता नहीं, ना किसी को फोन करने की, ना किसी से बात करने की। जहां मोह है वहां पर थेरेपी क्या है? ट्रीटमेंट, जीरो कॉन्टैक्ट थेरेपी, जीरो कॉन्टैक्ट। उसमें एक और शब्द है इमोशनल हुक्स। ये क्या होता है इमोशनल हुक्स? कोई दोस्त है और इसे 2 मास बात नहीं किया, उधर से मैसेज आए हाउ आर यू, इसको कहते हैं इमोशनल हुक्स, जो है ट्रैप, न्यूट्रल, डिटैच्ड। वही मुक्ति का द्वार है, हमारा भी और उसका भी, क्योंकि जब तुम गिरोगे तो वो भी गिरेगा। और डिटैचमेंट के भी वाइब्रेशंस है, जैसे अटैचमेंट के वाइब्रेशंस है, जिसको हम गहराई से याद करते हैं। ये ना समझो कि उस तक हमारी याद नहीं जा रही है, वो सृष्टि के किसी भी कोने में हो, वो याद पहुंच रही है। यदि वो विकार के संकल्प है तो विकार उधर भी उत्पन्न होंगे और इधर भी। यदि वो वैराग के संकल्प है तो वैराग उधर भी उत्पन्न होगा इधर भी। इसलिए अवॉइड इमोशनल हुक्स, इट्स अ ट्रैप। समय एनर्जी ड्रेनर, टाइम वेस्टर्स, अनहदनाद, पाना था सुपालिया और प्रेम क्या प्रमाण। उस एक के साथ रहना, उस एक को साथी बनाना, ये कठिन कार्य है क्योंकि वो अदृश्य है। पर जितना जितना शरीर से डिटैच होंगे उसके बाद ही अनुभव होगा। शरीर भान में है, घूम रहे, फिर रहे, खा रहे, पी रहे, एंजॉय कर रहे, तो परमात्म प्रेम ऊपर ऊपर रहेगा। केवल भक्ति मार्ग जैसा, बाबा मदद करो, शब्दों के तल पर टंग लेवल पर ऑपरेट करेगा। उसके ऊपर ब्रेन का लेवल है, उसके ऊपर हार्ट का लेवल है। सो और क्या कहा आज की मुरली में? हाथ और साथ। और क्या कहा? आलस के विषय में बहुत सारी बातें कही है। क्या परिभाषा है आलस की? करेंगे, देखेंगे, सोचेंगे। और ये मुरली तो हमने सुनी हुई है, ये बातें हमको पहले से ही पता है। अमृत वेले सोना, भगवान का अपमान है। तपस्या का अपमान है। अभी तक वही ठीक ठाक नहीं है, अभी तक वही स्थिर नहीं हुआ है, तो योगी जीवन भी स्थिर नहीं होगा, न कुमार न कुमारी जीवन स्थिर होगा। मेंढक की तरह उछलते रहेंगे बस, अस्थिर। इसलिए कार्य मुख्य तीन ही चीजों पर करना है, बी बी और बी। ब्रह्म मुहूर्त उसको पक्का करो। ब्रह्म मुहूर्त पहला स्पर्श है परमात्मा का, प्रथम दर्शन है अनंत का। दूसरा ब्रह्मचर्य, जहां ब्रह्मचर्य सद गया वहां सब कुछ अपने आप ही आ जाएगा, क्योंकि जितना मन प्योर होगा उतना मन एकाग्र होगा। द प्योरर द माइंड द इजियर इट इज टू कॉन्सेंट्रेट। और जहां कॉन्सेंट्रेशन है और जहां एकाग्रता है वहां संसार की कोई भी विद्या, कोई भी कला, कोई भी स्किल, कोई भी ज्ञान, कोई भी विधा उसको तुरंत मास्टर कर सकते हैं। मन अस्थिर है इसका कारण, मन एकाग्र नहीं है इसका कारण खंडित ब्रह्मचर्य है। क्योंकि ऊर्जा शरीर से बाहर जा रही है, यदि बाहर जाने में सुख है तो यदि वो शरीर में ही रुक जाए तो कैसा सुख होगा। ओज और तेज में रूपांतरित होगी, विलक्षण स्मरण शक्ति होगी, वाणी में ओज होगा, एकाग्रता होगी, संकल्प में दृढ़ता होगी, एंड सो ऑन, लिस्ट इज एंडलेस। और तीसरा भोजन। ये तीन ही चीजें हैं जिस पर काम करना है। ये तीन कर लिया तो बाकी सब विल फॉल इन प्लेस, अपने आप सब कुछ ठीक होने लगेगा, सुधरने लगेगा। ये तीन मुख्य केंद्र है। सिर्फ सरकमफरेंस परिधि पर ढेर सारी चीजें है, सेवा है, संबंध है, करियर, जॉब, पैसा, इंटरेक्शंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये सब बाहर घूम रहा है। केंद्र में तीन है, कार्य इन पर करना है। इस पर कार्य करते ही शरीर की बीमारी और शरीर वो भी ठीक होने लगेगा। और अच्छे पुरुषार्थ के लिए अच्छा शरीर चाहिए, स्वस्थ। जो बार बार बीमार ही पड़ते रहते हैं, यहां दर्द वहां दर्द, यहां दुखता है वहां दुखता है, थकान होती है, नींद ही नहीं आती है, बेचैनी होती है, घबराहट होती है, डर लगता है, कैसे पुरुषार्थ करेंगे? मौसम बारिश में भीग गए ना, इसलिए ऐसा हुआ। यहाँ का पानी हमको सूट नहीं करता, इसलिए ऐसा हो रहा है। यहाँ का भोजन हमको सूट नहीं करता, एकदम फीका, हमें तो वो वाला चाहिए, अच्छा वाला एकदम। तो और कौन सी पॉइंट है मुरली में? भगवान को कौन से बच्चे पसंद है? वीआईपी कौन है भगवान परमात्मा डायरेक्टरी में? जो भोले हैं और जो छल कपट छल कपट छल कपट छल कपट करते रहते हैं। क्या करते हैं? छल कपट छल कपट छल कपट, षड्यंत्र ही करते रहते हैं दिन रात। माइंड में क्या चलते रहता है? किसको कैसे फंसाऊं? वो भगवान क्या करता है उनको? वो तो आया ही नहीं मुरली में, तो भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं है। वो भोलों का भगवान है, भोले ही वीआईपी है उसके लिए। जो झूठ में जीते हैं वो डर में जीते हैं। उनको निरंतर युक्तियां रचनी पड़ती है अपने झूठ को छिपाने की। बहुत ज्यादा मेमोरी पावर चाहिए, इसको ये बोला, उसको वो बोला, किसको क्या बोला वो याद रखना। और सत्य का मार्ग बहुत आसान है, एक ही है, वही बोलते रहो, उसमें चेंज नहीं है। तो भगवान को कौन से बच्चे प्रिय है? जो भोले हैं, जो सच्चे हैं। हो सकता है उनके पास ज्ञान बहुत नहीं है, कोई भाषण वगैरह कभी करते ही नहीं है, मनसा सेवा भी दिमाग कमजोर है, नहीं कर सकते हैं। पर जो भी करते हैं, दिल कैसा है? स्वच्छ है, किसी का बुरा नहीं सोचते, किसी का अहित करने की इच्छा नहीं है, ऐसे बच्चे भगवान को प्रिय है। और बोल कैसे हो? स्लोगन मीठे, जहां वाणी ही कर्कश है वो दिखाता है कि साधना अपूर्ण है, क्योंकि वाणी लास्ट निचोड़ है हमारी साधना का। कोई कितनी भी बड़ी साधना करे, बहुत अच्छी साधना करे, 2 बजे उठ के साधना करे, भाषण बहुत करे, परंतु वाणी में क्या है? द्वेष, हीन भावना दूसरों के प्रति, तो कितने मार्क्स मिलेंगे? और क्या है मुरली में? और क्या है? किसी एक राजा को अपने हीरे से बहुत प्यार था, इतना प्यार कि दिन रात अपने हीरे को देखते रहता था, परंतु उसे भगवान में भी रुचि थी और अपने गुरु के पास जाता था और नए नए गुरु की खोज करता था। एक विलक्षण योगी उस शहर में आया, राजा उसके पास पहुंचा। योगी ने कहा ऐसे ऐसे भगवान को याद करो, वो गया और याद करने लगा, फिर से हीरा याद आया। वो फिर अगली बार गया और कहने लगा एक बात बताना भूल गया, मेरे पास एक बहुमूल्य बेशकीमती हीरा है और मैं जब तक उसको देखता नहीं, मेरा इतना मोह है उसमें, मैं भगवान को याद करने जाता हूं, मेरा ध्यान उस हीरे की तरफ जाता है। वो योगी उससे कहता है, वो नहीं कहता जो राजा ने सोचा था, क्योंकि सबने अब तक यही कहा था कि ये हीरे को हटाओ और भगवान को याद करो, ये हीरा बाधा है, ये हीरा उलझन है। उस योगी ने कहा तुम इस हीरे पर ध्यान करना चालू करो। क्या करो? इसी हीरे को भगवान समझो। अब उसका मोह और कहीं तो था ही नहीं, एक ही हीरे में था। अब ये द्वंद्व ही हट गया कि इसको भूलना है, अब उसी पे ध्यान करना है। उसी पे ध्यान करता गया, उसी पे ध्यान करता गया, उसी को भगवान समझते गया और धीरे धीरे हीरा हट गया और परमात्मा प्रकट हुआ। जिसको हम समझते हमारे जीवन की बाधा है, हो सकता है मुक्ति का मार्ग भी वही व्यक्ति है। ये शरीर को बाधा समझते हैं, ये शरीर का ही ध्यान, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, बॉडी स्कैनिंग, और शरीर को ही देखते 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 शरीर से अशरीरी हो जाएंगे। जिसको हमने समझा है बंधन है, हो सकता है मुक्ति भी वहीं से है, पर हमने क्या करके रखा है उसको, एक ऑब्स्टेकल माना है कि इसको मुझे हटाना है, और वो हटता नहीं है। अब उसी पर चिंतन चालू करो और करते 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 उसमें जो रस है वो खो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं दमन हुआ है, हमें बताया गया ये नहीं करो, वो नहीं करो, वो नहीं करो। इसलिए मन के सूक्ष्म स्वभाव को समझना, इसलिए मुरली में क्या आया है, समान की पहचान अर्थात स्व की पहचान है। ये तो बहुत बहुत ऊंची बातें हैं, विश्व का उद्धार मूर्त, आधार मूर्त, पूज्य हो, पूर्वज हो, ये बात में पहले मैं क्या हूं वो तो समझे, ये तो रियल फॉर्म है, परंतु पहले जिस प्रैक्टिकल लाइफ में जी रहे और जहां उलझ गए, उस कॉम्प्लिकेशन से बाहर निकलकर एक साक्षी भाव लाकर, जहां जहां अटैचमेंट है उसको कट कर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, ये सारे समान अपने आप आएंगे। समान का अभ्यास करना नहीं है, समान बन जाना है। बी समान, डोंट प्रैक्टिस समान, ये है टारगेट। हम ही समान बन जाए, सहज स्वाभाविक नेचुरल एफर्टलेस, ऐसे कैसे समान में रहने वाली आत्माओं को, ऐसे उमंग उत्साह के पंख से उड़ने वाले फरिश्तों को, ऐसे सच्चे सौदागरों को, ऐसे मीठी वाणी बोलने वालों को, ऐसे भूले बच्चों को, ऐसे ऐसे नंबर वन भगवान ईश्वर की संतान आत्माओं को, ऐसे सृष्टि रचता की पहली रचना आत्माओं को, ऐसे पूर्वज आत्माओं को, पूज्य आत्माओं को, आधार मूर्त आत्माओं को, उद्धार मूर्त आत्माओं को, ऐसे ताज तख्त और तिलकधारी आत्माओं को, ऐसे लाइट हाउस माइट हाउस आज है क्या, ऐसे समय को पहचानने वाली आत्माओं को, समय को समझने वाली आत्माओं को, समय के महत्व को जानने वाली आत्माओं को, समय समान से न उतरने वाली आत्माओं को, और समान और समय के महत्व को जानने वाली आत्माओं को, ऐसे रिस्पॉन्सिबल आत्माओं को, ऐसे परमात्मा प्रेम के अधिकारी आत्माओं को, पात्र आत्माओं को, ऐसे पाना था सो पा लिया ऐसी आत्माओं को, ऐसे मेरा बाबा कहने वाली आत्माओं को, ऐसे अपनी शान में रहने वाली आत्माओं को, सम्मान के सीट पे सेट रहने वाली आत्माओं को, अपसेट न होने वाली आत्माओं को, ऐसे अभी नहीं तो कभी नहीं कहने वाली आत्माओं को, आलस और अलबेलेपन से मुक्त आत्माओं को, ऐसे एकरस आत्माओं को, एकाग्र स्थिति वाली आत्माओं को, बेहद के खजानों के मालिक आत्माओं को, बालक सो मालिक आत्माओं को, ऐसे तुरंत दान महापुण्य करने वाली आत्माओं को, ऐसे डबल फल प्राप्त करने वाली आत्माओं को, ऐसे क्या लेने वाली लव लीन, ये है कि मुरली में, ऐसे डबल लाइट, डबल लाइट याद प्यार वाली आत्माओं को, ऐसे ऐसे किससे मुक्त, चतुराई से मुक्त आत्माओं को, ऐसे ब्राह्मण सो फरिश्ता आत्माओं को, नहीं फरिश्ता सो देवता आत्माओं को, ऐसे वो हो गया, ऐसे 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 इसके पहले काम कैसे चलाते थे कृपया यह स्पष्ट करें। नई चीजों की, नए व्यक्तियों की आवश्यकता नहीं है। ऐसी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति।